सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के, सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपनी चेतना के आध्यात्मिक विकास के प्रयोगों पर चर्चा कर रहे थे। एक सद्गृहस्थ के जीवन में उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, या कि ये कहें कि उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए दो छोटे छोटे से प्रयोग आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। वो चाहे तो उन प्रयोगों को रोज कर सकता है, करना भी चाहिए। पूजा और अभिषेक, ये दो आध्यात्मिक विकास के प्रयोग हैं। पूजा हमारे परिणामों की निर्मलता का प्रयोग है और अभिषेक उस निर्मल आत्मा के स्पर्श करके अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का प्रयोग है। पूजा में हम साकार से निराकार की तरफ बढ़ते हैं। बाह्य जगत जो हमें इन दो आंखों से दिखाई पड़ता है उसे हम साकार कहते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं पड़ता उसे हम निराकार मानते हैं, जो इंद्रिय और मन की पकड़ के बाहर है। तब हम साकार प्रतिमा का आलंबन लेकर के और अपना वो प्रयोग, जिसे सिद्धांत की भाषा में अनुष्ठान कहते हैं, साइंस की भाषा में उसे प्रयोग कहते हैं, तो हम उस प्रयोग या अनुष्ठान को करते हैं ताकि हम साकार से शुरू करके निराकार तक पहुंच सकें। हम विशुद्ध अनुराग से शुरू करके वीतरागता तक पहुंच सकें। पूजा विशुद्ध अनुराग की प्रक्रिया है। बिना धर्मानुराग के पूजा संपन्न नहीं हो सकती है। वह प्रयोग अत्यंत अनुरक्त चित्त के द्वारा ही किया जा सकता है। फुली डिवोट, डेडिकेट, ऐसा चित्त ही इस प्रयोग को कर सकता है, और उसके रिजल्ट्स भी उसे ही सर्वाधिक मिलते हैं जो जितना अधिक समर्पित है, जो जितना अधिक भावनात्मक लगाव महसूस करता है भगवान से। एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक बहुत गहरा आत्मीय भाव, तब जाकर के ये पूजा का प्रयोग। और फिर उस पूजा के प्रयोग में पहला ही कदम है अभिषेक का, जिसमें कि हमारी विशुद्धि बहुत अधिक चरम पर पहुंच जाती है स्पर्श करने मात्र से। आज भले ही उस पूजा के अनुष्ठान या कि प्रयोग को हमने अपने जीवन से खारिज कर दिया हो, या कि जिसे खारिज करने के लिए हमने अपने ज्ञान का प्रयोग किया हो, अपने क्षयोपशम का हम लोगों ने इस तरह से दुरुपयोग किया है कि हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये जो अभिषेक है वो आगम सम्मत नहीं है या कि अनिवार्य नहीं है, इस पर हमने अपने क्षयोपशम का उपयोग किया है। देखो तो हमें जो अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त करना चाहिए था उसको हमने अपने ज्ञान के चलते नकार दिया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी अकृत्रिम जिनालयों में अभिषेक की प्रक्रिया होती है, वहां पर कहीं कोई धूल के कण नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स वहां नहीं है। फिर क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अभिषेक तो सिर्फ मूर्ति पर जमे हुए धूल इत्यादि को प्रमार्जित करने के लिए किया जाता है, इसलिए रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम उससे निर्णय ले लेते हैं। जबकि पूजा के छह अंगों में से पहला अंग स्नपन ही है, भगवान का अभिषेक करना, और उस अभिषेक के लिए कहते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना, उसकी तैयारी करना। फिर कहते हैं पुराकर्म, कहां पर भगवान का अभिषेक करेंगे उस स्थान की शुद्धि, और काहे से करेंगे वो जल के भरे हुए कलश, इसकी स्थापना करना पुराकर्म। और फिर कहते हैं स्थापना, सिंहासन पर लाकर के भगवान को विराजमान करना, और फिर सन्निधिकरण। मैं वैसा ही इंद्र बनकर के, जैसे कि सौधर्म इंद्र और भगवान का अभिषेक करता है, मैं वैसा ही बनकर के पूजा शुरू कर रहा हूं। ये चार चीजें तो उसमें से अभिषेक संबंधित ही है। फिर आता है अष्टद्रव्य से पूजन करना और आरती करना, और अंत में जो है और पूजा में होने वाली जो गलतियां हैं उनकी क्षमापना करना, उनके लिए क्षमा याचना करना और उनका समापन करना। इन छह में से चार में तो अभिषेक की ही प्रक्रिया की जा रही है, और ऐसा होने के बावजूद भी देखो तो हमारा ज्ञान कि हम उसके लिए यह सिद्ध करने में जुट जाते हैं कि यह अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। और कई लोग तो अपने मंदिरों का ऐसा नियम बना देते हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, हमें तो सिर्फ एक चर्चा कर रहा हूं। कई लोग देखो तो मजा, जैसे कि मंदिर उनका हो, मंदिर तो भगवान का होता है, जबकि अपना हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर का ये डिसिप्लिन है, ऐसा डिसिप्लिन शब्द दे देंगे उसको, और फिर क्या कहते हैं एक ही बार अभिषेक होगा और ठीक 7 बजे होगा। हम उनको सलाह देते हैं कि आप किसी इंजीनियर से मिलो, और हम इंजीनियरों से कहते हैं कि थोड़ा अपनी खोज को आगे बढ़ाओ, क्या करो एक मशीन बना दो ऐसे लोगों के लिए। हाँ, बहुत जब इतना इंजीनियरिंग डेवलप हो रही थी, एक मशीन नहीं बन सकती, मशीन जैसे इंजीनियर्स ने बनाई है वो जिसमें बटन दबाते ही ढम ढम ढूम ढूम होने लगता, सब बहुत सारे लोग जैसे बजा रहे हों, अब हर जगह खरीद में आ जाती, 35 से 50 हजार रुपए उसमें लग जाते हैं, रखी रहती, और बटन दबाते ही उसमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती, और उन्हीं ध्वनियों के बीच में कितनी जीवराशि बिना झाड़े पहुंचे बजाए जा रही है, वो चूहे भी उसमें ढम ढम में मर जाते हैं, उसका बिल्कुल भी व्यभिचार नहीं है। लेकिन मशीन ऐसा ही, मैं कह रहा हूं पर मेरी कोई सलाह मानेगा नहीं, मुझे मालूम है, मैंने कहा कि आप एक मशीन बना दो जिसमें कि 2 कलश ऑटोमेटिक फिक्स रहें, बीच में भगवान रख दिए जाएं, और फिर बटन दबाते ही ठीक 7 बजे, और दबाने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम कर दो, जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे बटन अपने आप पुश हो जाएगा, जलधारा शुरू, और फिर एक फिक्स कर दो टाइम 5 मिनट और जलधारा बंद। अब तुम आओ तो और मत आओ तो, हमारा तो अभिषेक 7 बजे से 7:05 तक फिनिश। ये अभिषेक ना हुआ, कंप्यूटराइज मैकेनाइज प्रोसेस हो गई। क्या अभिषेक ऐसी कंप्यूटराइज और मैकेनाइज प्रोसेस है क्या जिसको कि दोहरा लिया जाए कि ठीक 7 बजे, मेरा मन हो चाहे नहीं हो पर मुझे 7 बजे आना ही पड़ेगा और एक ही बार होगा? ये तो कहीं नहीं लिखा, ये कौन से ग्रंथ में से और कौन सा सिद्धांत है? जबकि लिखा तो ये है, जैसा कि मैंने पढ़ा है अपनी छोटी सी बुद्धि से भैया, लिखा तो यही है कि अकृत्रिम जिनालयों में 24 घंटे अभिषेक होता है, एक एक निकाय के देव के जिम्मे, एक एक निकाय के 4 निकाय के देव हैं, वैमानिक, भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर, इनके जिम्मे 6-6 घंटे अभिषेक का समय मिलता है इनके लिए पूरे 24 घंटे में। वहां चूंकि दिन रात का भेद नहीं है, ये बात जुदी है, लेकिन हम ये नियम कैसे बना सकते हैं कि एक ही बार होगा और वो भी निश्चित समय पर होगा? पर बनाया है लोगों ने, मैं उस पर क्या कह सकता हूं, कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो सैद्धांतिक बात है उसको मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं और आप समझें अपनी बुद्धि से, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से जब निर्धारित किया तो आपकी बुद्धि जब ठीक ठीक समझेगी तब बदल लेगी, और नहीं तो मैं कौन होता हूं बदलवाने वाला? नहीं तो आप कहें कि महाराज और आए थे सुबह और ऐसा कह रहे थे, तो क्या भगवान पानी में ही धरे रहे क्या? ऐसा कहने लगेंगे लोग कि सुबेरे से भगवान पानी में ही धरे रहे, अरे ठंड लग जाएगी उनको, हाँ ऐसा कह देंगे अपन। देखो तो 3 लोग के नाथ के बारे में अपन ऐसा कहते हुए जिब्बा हिलाते हुए अपने को थोड़ी भी शर्म नहीं आती, और वो वहां पर जो है कृत्रिम जिनाले में और 24 घंटे उन पर जलधारा हो रही है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा होगा, विचार करने की चीज है। और अपन कह देते हैं कि अरे उनको ठंड लग जाएगी और उन पर ये पानी में ही बैठे हुए हैं क्या भगवान,
तो वहां पर कौन सा ऐसा समय है 24 घंटे में जबकि वो अभिषेक ना हो?
विचार करने की चीज है, बस विचार, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप जो करें करते रहें, जैसा करना हो वैसा करें। मनमानी पंचम काल में ना होगी तो क्या चौथे काल में होगी? क्या पंचम काल में तो होगी? सिद्धांतों को वालाए ताक रख दिया जाएगा, सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया जाएगा और अपनी मनमानी होगी, जो जिसको पसंद है वो करेगा। कागम में क्या लिखा हुआ है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है, अभिषेक की इतनी बढ़िया प्रक्रिया जिसमें कि हम अपने आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए भगवान का साक्षात बीतराग तीन लोक के नाथ का स्पर्श करते हैं। अभिषेक चार प्रकार के होते हैं, ये और जरा क्लियर कर लें। आचार शास्त्र पढ़ लेना आप, उसमें लिखा हुआ है कि चार प्रकार का अभिषेक है जो कि तीर्थंकर के जीवन काल में होता है। सबसे पहले जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब बालक अवस्था में उनका जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर ले जाकर। क्षायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र करता है, ये विशेष रूप से कह रहा हूं, जिनको अपने सम्यक दर्शन की चिंता रहती है उनके लिए कह रहा हूं, कि ऐसा ना हो कि बालक भगवान का अभिषेक करने से मेरा सम्यक दर्शन गड़बड़ा जाए। जन्माभिषेक का पाठ बोलने से हो सकता है कि मेरा सम्यक दर्शन गड़बड़ा जाए। हाँ, ऐसा लोगों को लगने लगता है, उनके लिए कह रहा हूं कि सौधर्म इंद्र छायक सम्यक दृष्टि एक भवावतारी, वह बालक भगवान का अभिषेक कहां पर? सुमेरु पर ले जाकर करता, और एक साथ उसके जिम में अगर 170 स्थानों पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है तो एक साथ 170 जगह करने का सौभाग्य उसे मिलता है। इतनी विशुद्धि उसकी बढ़ती भगवान बालक भगवान के स्पर्श करने से। और सची महारानी इंद्राणी बालक भगवान को सिर्फ प्रसूति ग्रह से ला करके और बाहर इंद्र को सौंपती हैं, उतने मात्र स्पर्श से इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि एक भवावतारी हो जाती है, अगले भव में वो मोक्ष चली जाएंगी, निश्चित है। जबकि कौन सी पर्याय है? स्त्री पर्याय है, फिर भी इतनी विशुद्धि, सिर्फ स्पर्श, वो भी बालक भगवान, अभी तीन लोक के नाथ नहीं बने, अभी तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता में है, उदय भी नहीं आया है, केवल ज्ञान नहीं हो गया है, अभी बालक हैं हम और आपके जैसे। अब देखिएगा, फिर जब वे राज संभालते हैं तब उनका राज संभालने से पहले राज्याभिषेक होता है, वो दूसरे नंबर का अभिषेक है। और जब वे राज काज पूरा अपना करके कर्तव्य का पालन करके और जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं तब जैनेन्द्र दीक्षा से पहले उनका दीक्षाभिषेक होता है, वो तीसरे नंबर का अभिषेक है। अब अभिषेक की गुंजाइश नहीं है साक्षात भगवान पर, क्योंकि अनंत अवस्था में पहुंचने पर साक्षात भगवान पर अभिषेक नहीं हो सकता। कई लोग इस तरह का प्रश्न करते पाए जाते हैं कि देखो तो मुनि महाराज के तो आयुष्नान व्रत है और भगवान को स्नान करा रहे, ऐसा कहते हुए पाए जाएंगे, आप सुन लेना। तो उनको विचार करना चाहिए कि वे कहां गड़बड़ा गए हैं। साक्षात अरंत भगवान कर पर अभिषेक नहीं हो सकता, ये मैं भी जानता हूं, और साक्षात मुनि महाराज पर जल की धारा नहीं छोड़ी जा सकती, ये सब जानते हैं। पर लिखा क्या है? पंच परमेष्ठी के बिंब बनाकर के उन पर जल की धारा छोड़ना, ये चतुर्थ अभिषेक प्रथमाभिषेक कहलाता है। ये चौथे प्रकार का अभिषेक है जो कि एक गृहस्थ को, क्योंकि साक्षात अनंत भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, इस वजह से जिन बिंब की प्रतिष्ठा करके उस पर जल धारा छोड़ करके और हम स्पर्श करके वही लाभ अर्जित करते हैं जो कि अनंत भगवान के अभिषेक का लाभ। पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूरण धनी। आपके स्पर्श करने से मेरी ये पर्याय जो कि अत्यंत मलिन है पावन हो गई, और ये जो मेरी दरिद्रता है वो आज दूर हो गई आपके स्पर्श करने से, मैं पूर्ण धनी हो गया हूं, ऐसा फील कर रहा हूं, ऐसा रियलाइज कर रहा हूं स्पर्श करने मात्र। इतनी पवित्र अनुष्ठान को हमने और एक मिनट में अपने बुद्धि के चलते और कहां से कहां ले आए, सोचना चाहिए इसके बारे में। यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनने एक भी बार भगवान के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया होगा और पूरा जीवन निकल जाएगा। जिनको वह अधिकार कहीं कहीं पर नहीं मिला है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मां और बहनों को कहीं कहीं पर यह अधिकार नहीं मिला है कि वे स्पर्श करें, कहीं कहीं पर इसका भी अधिकार उन्हें है, दक्षिण भारत में चले जाएं तो अधिकार है, लेकिन यहां क्योंकि यह अधिकार नहीं मिला, वे नहीं करें तो कोई बात नहीं, वे अनुमोदना कर सकते हैं, वे दूसरे को प्रेरणा दे सकते कि आप करो ताकि मैं देख लूं, तब भी उन्हें उतना ही करने के बराबर फल मिलेगा। लेकिन अपन में से जो कर सकते थे उनमें हो सकता है कि 60-70 वर्ष का जीवन गुजर गया हो, एक भी बार भगवान का अभिषेक और स्पर्श करने का सौभाग्य अर्जित न कर पाया। बहुत पुण्य चाहिए भगवान का स्पर्श करने के लिए। मैं दो घटनाएं सुनाता हूं आपको, एक अपने जीवन की और एक प्रयोग जो कि वैज्ञानिक प्रयोग किया गया अभिषेक की प्रक्रिया पर। तमिलनाडु की पैरासाइकोलॉजी की बहनों ने, जिसमें से कोई भी जैन नहीं है, उन्होंने भगवान के अभिषेक के पीछे छिपी हुई वैज्ञानिकता का प्रयोग किया, जो कि पब्लिश हुआ बीटी वजावत के नाम से उन्होंने उसकी प्रस्तुति दी है, रिसर्च पेपर है वो। उन्होंने लिखा कि दो चीजों पर हमने कंसंट्रेशन किया, क्योंकि कोई भी अभिषेक होता है वो धातु की प्रतिमा पर होता है। अपन जो प्रक्षाल करते हैं बड़ी प्रतिमाओं का, जो पाषाण की हैं, उन पर उतनी मात्रा में उतनी देर तक हम जलधारा नहीं छोड़ सकते। हम शांति से जलधारा छोड़ सकते हैं जो प्रतिमाएं धातु की हैं उन पर। इसलिए उन्होंने उस प्रयोग को ही महत्व दिया है जो धातु की प्रतिमा पर होता है। धातु की अपनी कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस दो होती हैं। उनका कहना कि अभिषेक के पहले हमने उस धातु की कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधक क्षमता और विद्युत चालकता, इन दोनों को माप लिया। तब उन्होंने प्रयोग के दौरान देखा कि अभिषेक जब किया जाता है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, उन्होंने जल के साथ साथ चंदन, घी, दूध, दही का अभिषेक भी करके देखा है, और उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट पांचों चीजों को मिला करके जो किया जाता उसमें आए हैं। पर आप चूंकि सब यहां बैठे हैं और जल अभिषेक ही करते हैं, इसलिए कृपा करके कंफ्यूज नहीं हो, आप वो ही करते रहे। जो लोग करते हैं उनकी बुराई ना करें, इतना भर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप नहीं करते बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को चूंकि आप नहीं करते तो सम्यक दृष्टि ना मान लें, और जो करते हैं उनको मिथ्या दृष्टि का लेवल लगाने की कोशिश ना करें। इतना तो कर ही लें, प्यार से कर सकते हैं, इतना तो इसमें क्या, क्योंकि उनका प्रयोग तो यही कह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जब जल की धारा छोड़ी जाती उसके पहले जो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी होती है, तो रेजिस्टेंस तो घटती जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ती जाती, चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इससे होता क्या है, आयनाइजेशन होना शुरू होता है, और H2O जो पानी है वो H+ OH- इन आयंस में और आयनाइज्ड हो जाता है। ये एक प्रयोग है विज्ञान का, विज्ञान के बच्चे जानते होंगे, जिनने विज्ञान पढ़ा होगा वे जानते होंगे। और उससे जो OH- यानी नेगेटिव आइंस निकलते हैं, वे नेगेटिव आइंस बहुत हेल्पफुल हैं। अगर वातावरण से नेगेटिव आइंस खत्म हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए, और अगर अच्छे नेगेटिव आइंस हों तो हम स्वस्थ महसूस करेंगे। देखिएगा, एक तरफ आध्यात्मिक विकास और दूसरी तरफ शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों को समन्वित करने वाली अभिषेक की प्रक्रिया है। वो कह रहे हैं कि नेगेटिव आइंस हमारे हीमोग्लोबिन प्रोसेस को व्यवस्थित कर देते हैं। उस अभिषेक के दौरान जो नेगेटिव आइंस निकलते हैं वो पूरे गर्भगृह में, गंभारा जिसको वे गर्भगृह कह रहे हैं, जिसको कि वे एनर्जी का रिजर्वायर मानते हैं, कि वो एनर्जाइज हो जाता गर्भगृह। इसलिए उस गर्भगृह का कॉन्सेप्ट था, मंदिर में ऐसे हाल बना करके नहीं रखा जाता था, सब बेहाल हो गया नहीं, मंदिर को कवर अप करके उसका गर्भगृह, उसमें भीतर अनुष्ठान होगा, और जो गर्भगृह के बाहर खड़े हैं उन पर वो आइंस कैसे आए, तो चमर ढुलाए जाएंगे, चमर के माध्यम से वो बाहर तक फिकते जाएंगे, आइंस बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर खड़े वाले लोग भी पूरा लाभ लेंगे अभिषेक के दौरान जो देखने खड़े हुए। वहां तो नंदीश्वर द्वीप में तो प्रेक्षणिका, अभिषेक प्रेक्षणिका, अभिषेक देखने के लिए एक प्रेक्षणिका यानी बालकनी बनी हुई है स्पेशली, जिसमें देव खड़े होकर देखते हैं, सोचिएगा, और बुलाते वो एतेती, शीघ्र आओ इंद्र महाराज, आप अभिषेक शुरू करेंगे तब ना हमें सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि इंद्र के आने पर ही अभिषेक की शुरुआत होती है, और बाकी देव उस अभिषेक प्रेक्षणिका में देखने के लिए खड़े रहते हैं। तो ये जो अभिषेक की प्रक्रिया में आयनाइजेशन होता है, उससे हीमोग्लोबिन प्रोसेस प्रॉपर होती। अपन एक पंचा ऐसे ओढ़ लेते हैं, बहुत थोड़े से वस्त्र धारण करते हैं, उस समय, ताकि वे सारे हमारे शरीर से नेगेटिव आयंस टकराएं। हीमोग्लोबिन प्रोसेस क्या होती है? हीम और ग्लोब, ग्लोब तो जो है प्रोटीन को बोलते हैं और हीम जो है वो आयरन को बोलते हैं। हीमोग्लोब हमारे भीतर ये प्रक्रिया होती रहती है जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और आयंस, नेगेटिव आयंस हमारी इस प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा बाहर निकल जाती है हमारे शरीर से इजीली, तो हमारा स्वास्थ्य उतना बढ़िया रहता है। इसके लिए जबकि कुछ भी नहीं करना, अपने को अभिषेक बार करना पूरा मन लगा के पूरी श्रद्धा से, और हमारा बेनिफिट अपने आप हो रहा है, हमें लाभ अपने आप मिल रहा है। ऐसी प्रक्रिया जो विज्ञान सम्मत भी है और जो हमारी चेतना को विशुद्ध बनाने वाली, उस विशुद्धि की चर्चा करूं आपसे। ये प्रयोग तो उन लोगों ने किया जिसमें कि शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, जिसमें कि हमारी विशुद्धि बढ़ती, उसका प्रयोग तो मेरे अपने जीवन का खुद है। 1977 की बात है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मेरे मन में मां भगवान की पूजा करने का भाव आया और मैंने पूजा शुरू करी। और मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि पूजा कैसे करनी चाहिए, चुपचाप करना शुरू कर दी, जैसा किताब में लिखा था वैसे करता है। मैंने कभी अर्घावली नहीं चढ़ाई। आप ध्यान रखिएगा कि इन भगवान को भी एक थोर, इनको भी थोड़ी चिटकी डाल दो, इनको भी डाल दो, सब ऐसे बोल रहा हूं। आप करते हो तो करते रहना, मेरे मन में जो था मैंने बता दिया। अपनी अपनी चॉइस है, आपको जिस तरह करना, पर सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा तो ठाट बाट से करना। और कोई आकुलता नहीं है कि चार पूजाएं हो जाए। मेरी एक पूजा में मुझे डेढ़ घंटा लगता था, डेढ़ घंटे एक पूजा देवगुरु शास्त्र, और वो भी केवल रवि किरणों की। एक ही करी मैंने पूरे 3 वर्ष तक, और फिर तो यहां आ गया मैं। 77 से 80 तक करी और आनंद के साथ, और मैं मानता हूं कि उसी का परिणाम है जो कि मुझे और आचार्य महाराज की मेरे ऊपर कृपा हुई उस विशुद्धि की वजह से। मैं उसमें कभी भी कमी नहीं करी। मैंने डेढ़ घंटे लगना है, यानी डेढ़ घंटे लगना है, बीच में राष्ट्रपति भी आ जाओ तो मेरे से नहीं मिल सकते आप ना। उसमें आज चूंकि मेरा सेमेस्टर है और आज मेरा टेस्ट है, तो उसमें कमी कर दूं, उसमें कमी 5 मिनट भी कम नहीं होंगे। डेढ़ घंटे मैंने डेढ़ घंटे हम सबसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन धर्म के मामले में हमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया में क्या एडजस्टमेंट करें? संसार बढ़ाने की प्रक्रिया में एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में क्यों एडजस्ट करें? क्यों उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता? भगवान के अभिषेक का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? भगवान की पूजा का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? मंदिर का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या कि ये नहीं किया तो ये कर लो तो काम पूरा हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। ये प्रक्रियाएं जो हमारे लिए दी गई हैं, वो यथावत अगर ठीक ढंग से की जाए तो उनके पूरे लाभ हमारे जीवन को मिल सकते हैं। मुझे पुजारी जी बोले, मुझे तो अपना शुरू करनी रहती थी पूजा ठीक समय से, और मूर्ति पर जब तक प्रक्षालन हो जाए तब तक पूजा कैसे शुरू करें? और मैं जहां पूजा करता था वो आखिरी वेदी पड़ती थी, 7 वेदियां थी एक लाइन से, तो आखिरी वाली में नेमिनाथ भगवान थे, वहां करता था ठाट बाट से एक अकेले ही। तो अब वो जब 6 में सब में करके आएंगे प्रक्षाल, तब इधर का नंबर आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि पुजारी जी आप हमारे यहां से शुरू कर दिया करें। तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि बोले कि आप हमारी मदद कर दिया करें ना, थोड़ी सी करना क्या है, मैं वहां से शुरू करूंगा, आप यहां से थोड़ा शुरू कर दीजिएगा। 5 मिनट लगेंगे सूखे कपड़े से पहुंचना, फिर गीले से पहुंच देना, फिर सूखे से पहुंच करके 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और उतर आना आप नीचे। फिर जब हम अभिषेक करेंगे बीच की वेदी पर भगवान को विराजमान करके, तो उस अभिषेक को बाद में होगा, वो तो जब सब लोग आ जाएंगे और अभिषेक करेंगे तब होगा, पर इतना प्रक्षाल तपन कर ही सकते हैं। मैंने कहा भैया मेरे से नहीं बनता। मैं भयभीत हुआ बहुत, डरा मैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो, 3 लोग के नाथ हैं और कैसे करेंगे। उन्होंने कहा नहीं डरो मत आप, 3 स्टेप चढ़ना रहते थे और मेरे हाथ में दे दिए कपड़े, ये सूखा ये गीला। अब मैं ऊपर चढ़ते जा रहा हूं और कांप रहे हैं मेरे पैर, पसीने पसीने हो गए मैं। 3रे नंबर के स्टेप पे जब चढ़ा, भगवान के निकट पहुंचा, इतने निकट आ गया हूं भगवान के, ऐसा फील होने लगा। और फिर बाद में सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से पहुंच करके और बामुश्किल 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने जगह आके खड़ा हो गया, दूसरी वेदी पे गए ही नहीं और पूजा शुरू कर दी। भाव विहल कि क्या हुआ। बाद में मैं पूजा के दौरान सोचता रहा कि ऐसी क्या एक्साइटेड होने की बात थी, वहां तो पाषाण की प्रतिमा थी, वहां कहां भगवान थे जो मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूं। और इतना ही नहीं, मुझे याद है, मैंने याद किया कि क्या किया था, कैसे किया था अभिषेक, तो जब आंख की जगह पहुंच रहे थे तो धीरे से पहुंचा था, चेहरा बहुत धीरे से पहुंचा था, छाती पर थोड़े जोर से पहुंच दिया था, पैर तो अच्छे रगड़ रगड़ के पहुंचे थे। ये क्या हुआ? जो पाषाण यहां पर है वही तो यहां पर भी है, लेकिन नहीं, उस समय तो पाषाण नहीं दिख रहा था, उस समय तो भगवान लग रहे थे। और चोट ना पहुंच जावे, धीरे से पहुंचो भगवान की आंख, ये भगवान का चेहरा है। इतनी इतनी तन्मयता और इतनी एकाग्रता क्या भगवान के अभिषेक के समय आ सकती है? आ सकती है। इसीलिए तो ये रखा हुआ था, दीन दुनिया से थोड़ी देर के लिए बेखबर हो करके और हम इतने जुड़ जावें उन क्षणों से कि वे क्षण हमारे पूरे दिन भर को पवित्र बना दें। लॉ ऑफ एसोसिएशन, ये साइकोलॉजी का एक नियम है। आप तिलक लगा करके लौटते हैं, वो आप लॉ ऑफ एसोसिएशन है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। हम उन घटनाओं से, उन प्रक्रियाओं से जुड़ जाते हैं तो उनकी स्मृति दिन दिन भर बनी रहती है। वो इस क्षण स्मरण आते ही मन रोमांचित हो जाता है। दुकान पर बैठे हुए हैं, घर के कार्य कर रहे हैं और याद आ जाए कि भगवान का अभिषेक किया था, वाह, पूजा करते समय मेरे प्रणाम कितने विशुद्ध थे, याद आ गया तो एक क्षण के लिए रोमांचित हो गया, हृदय गदगद हो जाता है। जैसे कि किसी के घर में और भोजन करने जाते हैं और तिलक लगा देते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता कि वो तिलक लगा हुआ है। अब तो मिटा देते हैं लोग कि निकले सो बाहर मिटा लिया, दूसरी बार नहीं करना भोजन, ये थोड़ी कह रहा हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्या कहेंगे लोग कि बड़े बैकवर्ड हैं, तिलक विलक लगाए हुए, चंदन लगाए, जबकि मैं भूल रहा हूं उसमें चंदन और दीपक की ज्योति, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन को दूर करते हैं गर्भगृह के। ये भी उसमें जोड़ा हुआ है कि जब अभिषेक की प्रक्रिया हो तो चंदन की सुगंध और दीपक की ज्योति वहां पर हो और कोई भी ट्यूबलाइट व्यूलाइट नहीं जल रही हो उस गर्भगृह में, तो ये आयनाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। बल्कि अगर ट्यूबलाइट जली है, बड़े बड़े फोकस लगे हुए हैं, तो आयनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी होगी। ये भी उनने प्रयोग के दौरान, क्योंकि इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन होता है। आज मैं आपको इस तरह की बात कर रहा हूं, है ना, थोड़ी अलग ढंग की चर्चा है, रोज जो चर्चा करते हैं उससे अलग है, पर आप इसको भी समझें, मेरा ये मन था इसलिए मैंने आपसे ये चीजें कही। आपको अच्छी लगे तो आपकी हैं, अच्छी नहीं लगे तो मेरे पास रहेंगी, आपको मुझे क्या ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप यहीं छोड़ के जाइएगा कि क्या क्या बता रहे थे, कुछ भी तो आत्मा की कोई चर्चा नहीं करी उन्होंने, शुद्ध आत्मा की कोई चर्चा नहीं करी, बस इस क्रियाओं को बताते रहे, ऐसा भी कह सकते हैं कई लोग, ऐसा भी कह सकते हैं कई लोग, ये भी कह सकते हैं कि अरे सीधी सीधी बात करना थी और काय को इस तरह का। सब एनालाइज करके जानता हूं मैं किसके मन में क्या क्या बोल सकता है, क्योंकि वो सब मेरे पास भी है ना, वो मन, ये खोटा वाला मन ऐसे ऐसे जाल फैलाता है, ये सब सोचेगा, ठीक ठीक नहीं सोचेगा, दुनिया भर की बात सोचेगा, जिसमें अहित है वो सोचेगा, जिसमें कल्याण है वो नहीं सोचेगा। पॉजिटिव अप्रोच तो बहुत कम है, नेगेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे कच्चे मन को जरा संभाल करके इन प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा। मन तो इन सबसे विमुखी होगा, इन सबको अच्छा नहीं मानेगा, पर फिर भी इनके भीतर जो अच्छाई है, जो महत्व है, उसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और वो जो मैं आपसे लॉ ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा था, जो कि एक मैकेनिज्म है, 13 प्रकार की साइको मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म है, जो हमारे भीतर ऑटोमेटिकली होती रहती है, अपन को पता नहीं लगता कि कहां कैसे जुड़ गए हैं किस घटना से, और वो घटना कैसे कहीं पर भी रिकॉल हो जाती, फिर से याद आ जाती है। तो ये जो अभिषेक की प्रक्रिया का लॉ ऑफ एसोसिएशन है, मालूम कैसा है? एक यूनिवर्सिटी है सागर की, जिसका कि नाम बदल दिया गया है, सागर यूनिवर्सिटी की जगह पर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो उन्हीं के दिए गए धन से बनाई गई। उन दिनों में उन्होंने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन किया था, 1948 के पहले की बात है, 45 में 1 करोड़ रुपए बहुत होता था, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 2 किलोमीटर के एरिया में तो उसका फैलाव ही है, इतनी बड़ी। मैंने और जगह पर, अब जो लेटेस्ट बन रहे हैं इंस्टीट्यूट्स उनमें तो फिर भी देखा है, लेकिन उतनी प्राचीन उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं देखी। उनके जीवन की घटना बनाऊं, वो लायर थे, बड़े भारी वकील, उनके एक मुंशी जी थे जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे। जब वो कोर्ट में खड़े होते थे और कोई भी उनके आर्गुमेंट्स होना शुरू होते थे, तो उनका हाथ अचानक ही तीसरे बटन पर पहुंच जाता था उनके कोट के, वो कोट पहनते थे जिरह करने के लिए, और उनका बटन पर हाथ पहुंचा और उन्होंने उसको जैसे ही घुमाना शुरू किया, और फिर तो कोई भी आ जावे उनसे जीत नहीं सकता, ये बिल्कुल पक्की बात थी, सबको ये बात मालूम थी। और बिल्कुल मुंशी जी का पहला काम था कि जैसे ही वो पहुंचे और उनका कोट वो उनको दे और वो पहन करके शुरू करें। गवर्नमेंट के केसेस भी अगर हाथ में लिए तो गवर्नमेंट को जता दिया, और अगर किसी क्लाइंट का केस हाथ में लिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो गवर्नमेंट को हारना पड़ा, ये उनके बारे में प्रसिद्धि थी। एक व्यक्ति को वो उनकी चीज मालूम पड़ गई, उसने क्या किया कि उनके सोफर को और पैसे दे करके उनका वो तीसरा बटन तोड़वा दिया। जरा सा उनके कोर्ट में आने के पहले, गाड़ी से उतर के वो कोर्ट उनके साथ में आने का है उतनी देर में उसने वो तोड़ दिया। मुंशी जी भी नहीं देख पाए और मुंशी जी अपने हाथ में लेकर के आए हैं, और जैसे ही वो खड़े हुए और उनने शुरू किया और थर्ड बटन पर उनका हाथ गया और वहां पर बटन नहीं था, पसीने पसीने हो गए। जितने भी उन्हें बातें कहनी थी वो सब उल्टी कह गए। वो उससे तो दूसरे वाला क्लाइंट जो कि अपोजिट में था वो जीतने जीतने को हो गया। मुंशी जी देख रहे हैं कि क्या हुआ, ध्यान उनका चला गया तो फौरन भागे भागे गए और 5 मिनट के अंदर दूसरा कोर्ट लेकर के आया और कहा ठहरिएगा, आप अपना कोर्ट चेंज कर लीजिएगा, आदेश मिला कोर्ट का कि कर सकते हैं चेंज। कोर्ट चेंज किया, उसमें तीसरे बटन पर फिर हाथ गया, उसे घुमाना शुरू किया और फिर कहा कि मिलाड, मैंने अभी तक जो आर्गुमेंट्स दिए हैं मेरे विपक्ष का वकील उनको कहना चाहेगा, अब मैं उन सबका उत्तर देता हूं। अपने दिए गए पॉइंट्स और उन्हीं को फिर जो है उन्होंने जवाब देकर अपने क्लाइंट को जिता दिया था। लॉ ऑफ एसोसिएशन का यह उदाहरण साइकोलॉजी में बहुत प्रसिद्ध है कि इतने जुड़ जाते हैं हम किसी चीज से कि फिर वो चीज हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देती। ये प्रक्रिया ऐसी ही है, चाहे वो तिलक हो, चाहे भगवान की पूजा का अनुष्ठान हो, अभिषेक की प्रक्रिया हो, दिन भर वो हमारे जीवन से ऐसे जुड़ जाती है कि जब भी स्मृति में आती है तो मन एकदम विशुद्ध हो जाता है, कषायें मंद होने लगती हैं, विशुद्धि बढ़ने लगती है। इसके लिए था ये अनुष्ठान, अत्यंत श्रद्धा से भर करके ये अनुष्ठान किया जाना चाहिए। भैया आज मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है। 8 द्रव, उनके पीछे छिपा हुआ साइंस, उनके पीछे छिपी हुई महत्ता, उस पर भी विचार करना बाकी है। उन 8 द्रव्यों के बारे में अपन आगे आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। आज एक छोटी सी उदाहरण आपको बताऊं कि श्रद्धा किस तरह की होती है, ताकि अपने मन में भी वैसी श्रद्धा उत्पन्न हो। के जीवन की घटना है, वो शिखर जी की वंदना करने गए। शिखर जी की वंदना पहले कई लोग जो है वो नीचे नीचे की परिक्रमा करते थे, वो 36 मील वाली लंबी, जिसमें कि 2 दिन लग जाया करते थे। हमने आचार्य महाराज के साथ में वो सौभाग्य प्राप्त किया था। हम लोग नीमिया घाट से चढ़े थे, ईसरी बाजार से 10 किलोमीटर पहुंचते हैं तब नीमिया घाट पहुंचते हैं, और वहां एक मंदिर है छोटा सा, वहां दर्शन करके फिर वहां से और सीधे चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ना पड़ती है, सीधे पार्श्वनाथ टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां से फिर जो है और गणधर महाराज के यहां तक पहुंच करके फिर वापस लौट करके आना, और फिर नीचे उतर करके फिर ईसरी बाजार आना। इतना लंबा, जो भी हो जितना भी हो मुझे याद नहीं, पर ये एक यात्रा करने का ये भी ढंग, और दूसरा था कि पहाड़ के नीचे नीचे से उसकी पूरी परिक्रमा कर। वर्मी जी वही कर रहे थे। अब स्पीच क्या हुआ, एक दिन तो आसानी से निकल गया, भोजन तो करने का सवाल ही नहीं। ये आज के लोग थोड़ी हैं जो कि 4 कदम चलते हैं, पानी चॉकलेट बिस्कुट चाय चुनिया भर के थूकना वहीं पर उतने पवित्र पहाड़ पर मलमूत्र का विसर्जन करके और अपनी ही पवित्रता को नष्ट करना। अब तो शिखर जी की वंदना का आलम कुछ और ही है ना। वो प्यारे लोग रहा करते थे जो कि अपनी गंदगी को वहां विसर्जित नहीं करते थे, बल्कि अपने अंतरंग की गंदगी को दूर करके अपने परिणाम विशुद्ध करने जाते थे। अब दूसरा दिन तेज गर्मी, एक दिन का उपवास हो गया, दोपहर 3 बजे तक पहुंच पाएंगे वापस, तब नहा धो करके और फिर पूजा पाठ करके और भोजन पाएंगे। अब लेकिन 12 बजे हैं और आकुल विकल परिणाम हो गए, पानी की वेदना इतनी अधिक हुई कि शायद मरण निश्चित है। उन्होंने धैर्य पूर्वक सोच लिया कि कोई बात नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो कोई हर्जा नहीं, संलेखना ले लूंगा और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूंगा, लेकिन एक बार भगवान से अपनी विनय तो करना चाहिए। तो मालूम क्या विनय करी कि भगवान पार्श्वनाथ, मैं तो जैनी आदमी हूं नहीं जी, आपको मालूम है जैन धर्म में मेरी श्रद्धावश में यहां आया हूं। असाटी थे वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी, जैनी तो हूं नहीं, आपकी श्रद्धा बस और यहां आया हूं, और अगर रस्ते में मेरे प्राण निकल गए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हाँ, क्योंकि मैं तो संलेखना लेकर के और अपने परिणाम संभाल करके और स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन सुनो महाराज, बदनामी आपकी होगी। महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, बदनामी आपकी होगी कि एक जैनी व्यक्ति नहीं होते हुए भी वंदना करने गया था, वंदना करते ही करते प्राणांत हो गए। अब सोच लो आप, अब आपकी जिम्मेदारी, आप जानो, हमने तो आपसे प्रार्थना कर दी, भगवान तक ये हमारी प्रार्थना नहीं जाती, ना भगवान कुछ करते हैं। लेकिन ये जो श्रद्धा से भरा हुआ मन है जो उलाहना दे रहा है, श्रद्धा से मरा भरा मन ही उलाहना दे सकता है, श्रद्धा से भरा मन ही इतनी बड़ी बात कह सकता है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि धर्म की हंसी हो जावे, बल्कि दिन कोई फिर यात्रा करने भी ना आवे, कह रहे कैसी यात्रा है, ऐसा नेगेटिव थॉट्स किसी के मन में ना आ जावे। बस इतना विचार किया और वन्नी जी ने संस्मरण में लिखा कि मुझे 10 कदम आगे और लगा कि वहां वो जो गड्ढा है उसमें पानी होना चाहिए, देखूं तो। सो जाकर के देखा तो वहां तो बिल्कुल झर रहा है पानी उसमें से, जैसे वहां से कोई झिर हो जिसमें से पानी निकल रहा है, गड्ढे में आ रहा है, इतना साफ सुथरा पानी है। फौरन जो है और छन्ना लिया, साथ में ही था छाना पानी, और जितना पीना था उतना पी लिया और पी करके आगे बढ़े। आगे बढ़े तो वहां पर 50 लोग बैठे मिले, बेहाल, पानी नहीं है, कैसे चले। हरिवर्णी जी कहने लगे, घबरा मत, चलो हम बताते हैं, अभी तो हम पी करके आए वहां पर, उसी रास्ते से तुम लोग भी आए, तुम्हें ध्यान नहीं दिया तुमने, है वहीं पर। चले वे सब। अब जब वहां पहुंचे तो वहां तो ना गड्ढा था ना वहां पर पानी था, वो कहां से आया होगा। अब इसके पीछे का साइंस अब आप ढूंढते रहना, मेरे से ऊपर छत पे डिस्कशन कर लेना कहां से आया होगा। अभी तो इतना स्वीकार कर लो कि श्रद्धा से ऐसा सब कुछ भी हो सकता है, वो प्रकट में पानी आया हो ना आया हो, लेकिन मेरी श्रद्धा से मेरी प्यास तो आज भी बुझ सकती है। अगर ऐसी श्रद्धा है और फिर हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान का जो फल है वो 1000 गुना अनंत गुना तक हो सकता है। और हम अगर श्रद्धा से बिना भरे इन अनुष्ठानों को दोहराते हैं तो हमें इनका लाभ सहसा दिखाई नहीं पड़ता और हमें लगता है कि क्या रखा है इन क्रियाओं में। नहीं भैया, पूरी श्रद्धा से, पूरी आत्मीयता से, पूरे धर्मानुराग से, परिणामों की निर्मलता के साथ अगर इन अनुष्ठानों को करेंगे तो ये आज भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने में अपना बहुत सहयोग करते हैं। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में, करते कनिया दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश्वर मैया के शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तमनाश वेखो के प्रकाश वेखो आपा परवास वेखो मानु शिव कानी है वाणी के ज्ञान पर सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो
Thank you.
गुजरिया 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 गौरी पधारी गुजरिया
महारानी कृष्णा के आंगन
महारानी कृष्णा के आंगन
मृदंग बज पग गुजरिया भाई गुजरिया। Thank you.